ओम शांति। हम सभी का परम सौभाग्य है भगवान के इस यज्ञ के आदि रतन आदरणीय भ्राता जगदीश भाई जी, जिनका ये मास चल रहा है और जिनका पूरा चरित्र गुण और शक्तियों से संपन्न है, आज उन्हीं का चरित्र हम सभी के सामने बहुत सुंदर तरीके से, जिनके अंग संग रहने का भाग्य जिस आत्मा को प्राप्त हुआ वो है हमारी मीठी साधना बहन साधना दीदी। शुरू से लेकर अंत तक अब भाई जी के साथ रहे और उनके साथ वो महान विभूति जिन्होंने भगवान के इस यज्ञ का सारा साहित्य लिखा, एक एक किताब जो उनका मनन चिंतन, और ऐसे भाई जी के साथ जिन्होंने इस विश्व के सारे द्वीपों की विशेष यात्राएं की, सेवा के निमित्त जाना हुआ आपका अमेरिका, कनाडा, पुर्तगाल, फ्रांस, सारे कॉन्टिनेंट सेवा के लिए, तो ऐसी मीठी साधना दीदी जो आपकी ही दीदी है किंग्सवे कैंप सेंटर की, तो खुशी तो होती है ना, जो बहुत ही पावरफुल तरीके से, बहुत ही सुंदरता से, बहुत मधुरता से ज्ञान का एक एक रतन स्पष्ट करती हैं। और इतना ही नहीं तो आज आप खास जिस विषय को आप हम सभी के सामने रखने जा रही है उसका नाम है जीवन में गुणों का महत्व। इस विषय पर इसको क्लियर करते करते आदरणीय भाई जी के जीवन के एक एक वो गुण युक्त जो उनके कर्म थे वो भी हम सभी के सामने वो प्रस्तुत करती जाएंगी। तो आदरणीय साधना दीदी जी, एक बार वापस जोर से। भूल नहीं जाना 7:30 के बाद क्योंकि फिर अनाउंसमेंट नहीं होगी, ठीक है ना। तो पहले किसको जाना है? भाइयों को जाना है। आज भाइयों को नंबर दे रहे थे क्या? हमेशा कहते माताओं को आगे बढ़ाओ, आज भाइयों को पहले नंबर दे रहे हैं। भाई लोग इसके बाद 7:30 बजे जाएंगे सुखधाम में, ठीक है। फिर 15 मिनट के बाद 7:45 बजे सारी बहनें सारी माताएं फिर सुखधाम में जाएंगे। तो कोई भी इस डाइनिंग हॉल में नहीं जाना, ठीक है ना। खास बाबा राम भाई ने मैसेज भेजा, कई भाई बहने योग के नशे में सीधा बाहर चले जाते हैं। ओके, तो इस बात का भी ध्यान रखना। ओम शांति।
ओम शांति। गुड इवनिंग। थैंक यू सरिता बहन, आपने परिचय कराया बहुत सुंदर रूप से। तो आज हम सभी अपने को कितना न पद्मा पदम भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं जो हम प्यारे बाप दादा की भूमि पर बैठे हैं। जगदम्बा माँ जिन्होंने तपस्या की उनकी भूमि पर हम सब बैठे हैं, वरदानी भूमि, बाबा और मम्मा की चरित्र भूमि, और हमको भी ये सौभाग्य मिला आप सबके सम्मुख अपने दिल की बातें रखने का। तो आज जो हमको टॉपिक दिया गया है जीवन में दिव्य गुणों का महत्व, तो मैं सोच रही थी इसके ऊपर कि एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये जो सृष्टि चक्र है, ड्रामा, इसमें खेल ही सारा किसका है? गुणों का और अवगुणों का। जब हमारे अंदर दैवी गुण थे, सद्गुण थे, तब हम देवी देवता कहलाते थे, और जब हमारे अंदर द्वापर युग के बाद से आसुरी गुणों ने प्रवेश करना शुरू किया तो हम असुर कहलाने लगे। बाबा कहते तुम जानवर से भी बदतर हो गए। तो शिव बाबा ने हमारे ऊपर कृपा की, ड्रामानुसार शिव बाबा परम धाम घर से आए और आकर के हम बच्चों के जीवन में बाबा क्या करा रहे हैं? पुनः दिव्य गुणों की धारणा, दैवी गुणों की स्थापना, गुणों का सागर शिव बाबा हमको दिव्य गुणों का गुलदस्ता भेंट करता है। इससे सुंदर गिफ्ट कोई और होगी? कोई नहीं हो सकती। तो बाबा का बनने से पहले हम सभी ने गुणों के बारे में सुना तो बहुत था, कथाकार भी बहुत कथाएं करते हैं, पंडित, साधु संत आदि आदि, उनके मुख से भी हमने बहुत कुछ सुना, पोस्टर्स भी हमने बहुत देखे, पढ़े, और किताबों में भी हमने गुणों के बारे में बहुत कुछ पढ़ा होगा पहले, परंतु जीवन में दिव्य गुणों की धारणा हो नहीं पाई। तो जब तक स्वयं शिव बाबा ना आए परम धाम से गुणों का सागर, तब तक जीवन में दिव्य गुणों की धारणा मुश्किल है, मुश्किल है। तो हमारे कितने सुंदर गीत भी बने हुए हैं, जैसे अभी हम सभी योग में बैठे थे तो गीत बज रहा था, दिव्य गुणों के गुलदस्ते से जीवन महक जाता है। कितना सुंदर गीत है, एक एक गुण उसमें कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, एक एक गुण क्या है, एक एक गुण धारण करने से जीवन क्या से क्या बनता है, एक एक गुण की वैल्यू क्या है। कितने सुंदर गीत हमारे बाबा के बच्चों ने बनाए हैं बाबा के ज्ञान के आधार पर। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है, तो बाबा आए हैं हम सबको हीरा बनाने, कांटों से फूल बनाने, हमारे अवगुणों को निकाल, हमारे अंदर गुणों की धारणा कराने। तो सभी तैयार है ना? अभी तैयार है या पहले से ही तैयार थे? जीवन का लक्ष्य क्या है हम सभी का? देवी और देवता बनना। कहता है नर को श्री नारायण बनाता हूं और नारी को श्री लक्ष्मी बनाता हूं। तो पहले भी सुनते थे कि जिसके अंदर सद्गुण है वो लक्ष्मी है, जिसके अंदर कुलक्षण है वो कुलक्षणी है, सुनते थे ना? तो अभी हमें एक्चुअल में पता चला। तो बाबा हम सब के अंदर सद्गुणों की इस समय धारणा करा रहे हैं, दैवी गुणों की स्थापना करा रहे हैं। हमें सचमुच में बाबा नर से नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी बना रहे हैं। तो आज हम प्रैक्टिकल बातें करेंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हम अपने सामने लाएंगे। किसका? बाबा और मम्मा, वो तो है ही गुणों की मूर्त। इसके साथ साथ हमारी सभी परम आदरणीय दादियां, उनका जीवन भी कैसा रहा? सद्गुणों से संपन्न, गुणों से संपन्न, गुणों की मूर्तियां, चैतन्य मूर्तियां, हम सब ने उनको देखा। आप में से कुछ एक भाई बहनों ने शायद नहीं भी देखा होगा, कुछ एक दादियों से मुलाकात हुई होगी, कुछ एक से नहीं भी हुई होगी। तो अगर इस दृष्टिकोण से मैं अपने जीवन को देखूं तो उसमें भी मुझे लगता है कि मेरा ये परम सौभाग्य रहा जो हमें गुणों की मूर्तियां, हमारी आदरणीय दादियां, उनसे भी मिलने का सौभाग्य मिला, उनके पास बैठने का हमको चांस मिला, उसका उनका प्यार दुलार हमको मिला, उनकी पालना मिली, उनका बहुत निस्वार्थ हमको प्रेम मिला। और आज हम विशेष जो बात करने जा रहे हैं दादियों के साथ साथ, एक अद्भुत सितारा, एक महान विभूति, कौन? हमारे आदरणीय जगदीश भाई साहब। आप में से कितने भाई बहने हैं जो जगदीश भाई साहब को जानते हैं, और कितने हैं जो उनको नहीं जानते हैं? अच्छा, ऐसे भाई बहने भी हैं जो उनके बारे में बिल्कुल नहीं जानते या थोड़ा थोड़ा जानते हैं? थोड़ा थोड़ा जानते हैं। तो चलो आज हम भाई साहब के बारे में थोड़ा अधिक जानेंगे, कोशिश करूंगी जो जो उनके बारे में ख्याल में आता जाएगा वो आप सबके साथ मैं शेयर करूं। तो पहले हम उनका थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। हमारे आदरणीय जगदीश भाई साहब, उनका जन्म मुल्तान का था और उनका पहला नाम ऋषि था। उनके लौकिक घर में 5 भाई, एक भाई बिजनेस करते थे, एक भाई लॉयर थे, एक चार्टेड अकाउंटेंट थे। भाई साहब सबसे छोटे थे, पढ़ा लिखा परिवार था और बहुत ही सुसंस्कृत परिवार था। तो जगदीश भाई साहब को बचपन से पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक था, और पढ़ाई लिखाई के शौक के साथ साथ इनके अंदर समाज सेवा, देशभक्ति, ये सब संस्कार भी कूट कूट के भरे थे, और साथ में भक्ति में भी बहुत ये आगे थे। साधु संतों के साथ, सूफी ऋषि मुनियों के साथ उठना बैठना इनका बचपन से चलता था, और इन्होंने हजारों किताबें पढ़ी थी अध्यात्म को लेकर के। तो इनको छोटेपन से ही जैसे मन में एक तड़फ थी कि मुझे कहीं से भी भगवान का परिचय मिले, सत्य परिचय मिले, मेरा भगवान से मिलन हो जाए, मैं भगवान से मिलना चाहता हूं। उनको लगता था कि जैसे ये संसार एक बहुत बड़ा पिंजरा है और इसमें मैं पक्षी कैद हो गया हूं, तो आत्मा तड़प रही थी। तो भगवान की तलाश में इनका बहुत स्थानों पर जाना हुआ, और बहुत से, जैसा मैंने कहा, साधु संत ऋषि मुनि आदि, उन सब से इनका मिलना होता रहा। और स्टूडेंट लाइफ में एक इनका सब्जेक्ट था पॉलिटिकल साइंस का, तो उसमें इनको थोड़ा सा ओम मंडली के बारे में पता चला। तो सिंध हैदराबाद में ओम मंडली है, और वहां पर सफेद वस्त्रधारी हैं, संस्था के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी, फिर सरकार जो है कैसे वहां पर इनको बंधन डालते हैं, कई प्रकार की उनके ऊपर बातें आ रही हैं सोसाइटी की तरफ से, तो ऐसा ये सब इन्होंने पढ़ा। पूरी जानकारी नहीं थी, स्पष्ट कुछ भी मालूम नहीं था। तो इनको अचानक से एक दिन बहुत मन में तीव्र संकल्प आया, तो सिंध हैदराबाद जाऊं। और पूरा दृश्य तो इनको दिखाई नहीं पड़ा, पूरा इनको समझ में नहीं आया कि वहां जाकर के मुझे क्या करना है, मुझे कौन मिलेगा, क्या होगा। बस सिंध हैदराबाद ये चल पड़े, और वहां इन्होंने सफेद वस्त्रधारियों को देखा। उन समय तो हमारी दादियां कुर्ता पजामा आदि ये सब पहनते थे, दूर से देखा तो सफेद वस्त्रधारियों को देखा इनको, पर पूरा समझ में नहीं आया कि सफेद वस्त्रधारी कौन है। दूर से देखा और थोड़ा घूम घाम के, शायद ड्रामा में उस टाइम पार्ट नहीं होगा, तो ये वापस आ गए। और वापस आने के बाद दिल्ली में, उनका इतिहास तो बहुत बड़ा है, कहानी तो बहुत बड़ी है, शॉर्ट में आप सबके साथ शेयर कर रही हूं। भाई साहब हमारे टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज सोनीपत में, वहां प्रिंसिपल थे और स्टूडेंट्स का हॉस्टल था, उसके वार्डन भी थे। तो दिल्ली में थियोसॉफिकल सोसाइटी में एक बार दादियों का प्रोग्राम था और उसमें हमारे परम आदरणीय दादी जानकी जी और परम आदरणीय दादी कुंज जी, दोनों दादियां वहां पर आए थे और दादी जानकी और कुंज दादी एक ने भाषण किया और दादी जानकी उन्होंने योग कराया। एक्चुअली दादी ने भाषण करके जब पूरा किया तो जगदीश भाई साहब ने ही प्रश्न किया कि आप तो यहाँ योग सिखाने के लिए आए थे, आपने योग तो सिखाया नहीं। तो कुंज दादी ने कहा कि इस तरह से कुर्सियों पे सब बैठे हो, ऐसे थोड़ी कुर्सियों पे बैठ के योग होता है, उसके लिए तो पट पर बैठना होता है, आलती पलती लगा करके बैठना होता है। तो भाई साहब ने कहा लो मैं अभी प्रबंध कर देता हूँ, और कुर्सियां हटाई और सब पट पर बैठ गए। और फिर हमारे दादी जानकी जी उन्होंने योग कराया। बाबा कहते हैं ना भारत का प्राचीन राजयोग, इसकी कितनी महिमा है। तो जब दादी ने योग करा के पूरा किया तो उसके पश्चात दादी जी ने पूछा कि जब सभी योग में बैठे थे तो किस किस को अनुभव हुआ। अब सभा में लोग तो और भी थे और सिर्फ हाथ किसने खड़ा किया, सिर्फ एक जगदीश भाई साहब ने। तो उन्होंने कहा कि मेरा मन जब आप योग करा रहे थे तो पूरी तरह एकाग्र हो गया था और उनको बॉडी से डिटैच होने की वो फीलिंग आई कि आत्मा और शरीर जैसे अलग अलग हैं। दादियों की तो स्थिति भी बहुत ऊंच और बहुत महान थी ना, तो दादियां जब योग कराते तो इतनी पावर होती थी उनके योग में कि जैसे देह से न्यारा कर देते थे। तो उनको वो अनुभव हुआ बहुत सुंदर। और प्रोग्राम पूरा हो गया और प्रोग्राम पूरा होके सब अपने अपने घरों को वापस लौटने लगे। तो भाई साहब ने फिर दादी जी से प्रश्न किया कि आपने जो भी ये योग कराया, अगर मैं इसको कंटिन्यू करना चाहूं तो उसके लिए क्या तरीका है, उसकी क्या विधि है। तो उस समय तो बहुत यंग थे ना, आयु बहुत उनकी छोटी थी, 20-22 साल के होंगे। तो दादी जी ने उनको फिर कोर्स के बारे में बताया। तो उन दिनों में दिल्ली में मलकागंज, बाद में कमला नगर सेंटर खुला, तो वहां का इनको एड्रेस दिया दादी जी ने। और वैसे तो भाई साहब उनके पीछे पीछे जा रहे थे प्रोग्राम के बाद, तो क्योंकि यंग थे ना तो दादियां भी कोई उस समय बहुत बड़ी आयु तो थी नहीं, तो दादियों को लगा ये जवान लड़का हमारे पीछे पीछे कौन आ रहा है। तो भाई साहब ने उनसे पूछा तो फिर दादियों ने उनको कोर्स के बारे में बताया और फिर टाइम फिक्स किया। तो अगले दिन का टाइम दिया था सुबह का 5 बजे का, और भाई साहब उनको सोनीपत से आना होता था। तो वो रात को प्रोग्राम ही इतना लेट हो गया था, लेकिन अनुभव इतना उनको सुंदर हुआ था, गहरा हुआ था, और जिस चीज की आत्मा तलाश में थी वो तो आत्मा को उसी क्षण पता चल गया था कि मुझे मिल गया है और यही स्थान है जहां से मुझे सब कुछ प्राप्त होने वाला है। तो अगले दिन सवेरे सवेरे 4 बजे वो सेंटर पर पहुंच गए और डोर नॉक किया। तो दादी जी ने दरवाजा खोला, अरे तो टाइम से पहले ही आ गए हैं। और फिर उनको अंदर बिठाया और उनका कोर्स फिर शुरू किया। तो कुछ दिन तक भाई साहब का कोर्स चला और आदरणीय कुंज दादी जी ने उनका कोर्स कराया। तो कोर्स के दौरान भी भाई साहब प्रश्न किया करते थे दादी जी से, लेकिन प्रश्न करते थे किस लिए, समझने के लिए। कहते हैं गुरु से निकलवाना पड़ता है, गुरुओं के पास बहुत कुछ होता है। अभी शिव बाबा सतगुरु के पास कितना माल है, कितना वखर है, बाप दादा के पास, हमारे बड़े महारथियों के पास, अभी पीछे हमारे पास सेंटर पर भी मेरे ख्याल से राजू भाई जी आए थे, तो भाई सब यही सुना रहे थे कि जैसी सभा होती है वैसा मुख से बाबा निकलवाता है। ऊर्जा होती है ना हर सभा की, अलग अलग ऊर्जा होती है। तो स्टूडेंट भी तो अच्छा चाहिए, फॉलोवर भी तो अच्छा चाहिए, जो गुरु से सब कुछ निकलवा ले। तो भाई साहब प्रश्न करते रहते, लेकिन समझने की दृष्टिकोण से, ज्ञान की गहराई में उतरने के भाव से, शुरू से उनका दादियों के प्रति बहुत बहुत रिगार्ड रहा, बहुत बहस करने के भाव से कभी उन्होंने प्रश्न उत्तर नहीं किए। हमारे पास भी सेंटर्स पर आते हैं स्टूडेंट्स, तो ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हमको मिलते हैं जो प्रश्न उत्तर करते हैं, लेकिन अंदर अपना अभिमान होता है, तो हम इनको थोड़ा नीचे रखें, अपनी बात को हम ऊपर रखें। लेकिन भाई साहब प्रश्न उत्तर करते थे समझने के लिए, इसलिए उनका कोर्स थोड़ा लंबा चला। और कोर्स पूरा हुआ, और कोर्स पूरा होने के पश्चात फिर ग्रुप जा रहा था मधुबन, तो इन्होंने भी फिर दादी जी को बोला कि मेरे को भी मधुबन जाना है। तो कुंज दादी ने कहा अभी आप मधुबन नहीं जा सकते हो, अभी तो आप नए नए हो, हमारे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नियम है एक साल तक जो नियम धारणाओं पर चलते हैं उनको मधुबन जाने की छुट्टी मिलती है, आपका तो अभी कोर्स ही पूरा हुआ है, आप कैसे जा सकते हो। तो इनको तो बस मन में जैसे लगन लगी हुई थी, धुन थी कि जिस प्यारे बाबा का मुझे परिचय आपने दिया है, जिसकी आपने पहचान मेरी बुद्धि में बिठाई है कि वो शिव बाबा सारी सृष्टि का रचयिता, विश्व का मालिक, वो आया हुआ है, प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आया हुआ है और सत्यों की स्थापना कर रहा है, तो मैं उससे मिले बिना कैसे रह सकता हूँ। बाबा भी मुरलियों में कहते हैं ना, बच्चे जिन बच्चों को निश्चय हो जाते हैं वो तो टिकट कटाई और भागे मधुबन की ओर। तो इनका भी ऐसा ही था, निश्चय हो गया, अब आत्मा रह नहीं पा रही, तो इन्होंने दादी जी को कहा, कुंज दादी जी को और दादी, फिर मनमोहिनी दीदी को जाकर सब सुनाते थे। तो मनमोहिनी दीदी ने कहा कि उनको बोलो कि 108 बार निश्चय का पत्र लिखे, और 108 बार जो निश्चय का पत्र लिखे वो भी एक जैसा नहीं होना चाहिए 108 बार, कि शिव बाबा आया हुआ है, ब्रह्मा तन में आया हुआ है, सत्यों की स्थापना हो रही है, मैं ब्रह्मा कुमार बन गया हूँ, अब मैं देवता बनने का पुरुषार्थ करूंगा, दिव्य गुण अपने जीवन में लाऊंगा, ऐसे एक ही बार नहीं, एक ही तरह का नहीं। उनको बोलो 108 बार जो लिखना है वो अलग अलग रूप से लिखना है, लिखे कि अमरनाथ आया हुआ है, अमर कथा सुना रहे, और मैं पार्वती उसकी अमर कथा सुन रही हूँ, फिर लिखे सोमनाथ आया हुआ है, सोमरस पिला रहे, और मैं आत्मा सोमरस पी रही हूँ, महाकालेश्वर आया हुआ है, वो मुझे काल के ऊपर विजय प्राप्त करा रहे, पाप कटेश्वर आया हुआ है, मुझे आत्मा के जन्म जन्मांतर के योग अग्नि से पाप भस्म करने, ऐसे 108 बार बोलो कि पत्र लिख करके लाए तब छुट्टी मिलेगी। तो उन्होंने भाई साहब को बोला, दीदी जो कहती तो कुंज दादी वो फिर वो भाई साहब को बोलते। तो टाइम बहुत शॉर्ट था, ग्रुप मधुबन जा रहा था, उनके पास इतना टाइम नहीं था जो इतना लंबा ये लिख सके, तो उन्होंने 28 बार लिखा, और वो पत्र लिख करके उन्होंने कुंज दादी जी को दे दिया। कुंज दादी ने फिर आगे बड़ी खुशी खुशी जाके मनमोहिनी दीदी जी को दिया, दीदी देखो लिख करके लाया है पत्र, निश्चय बुद्धि बच्चा है बाबा का। तो फिर मनमोहिनी दीदी जी ने वो पत्र देखा, पत्र पढ़ा, तो वो तो 28 बार है। तो अब मनमोहिनी दीदी ने कहा, मैंने बोला था ना कि 108 बार जब तक नहीं लिखेगा तब तक मधुबन नहीं जा सकता है। तो उन्होंने फिर कहा, जगदीश भाई आप ये क्या करते हो, मैंने आपको बोला था 108 बार लिखो और आप 27 बार लिख करके लाए, अब आपको मधुबन जाने की ऐसे तो दीदी छुट्टी नहीं देंगी। तो उन्होंने कहा कि आप दीदी जी को बोलो कि कृपया वो जो मैंने लिखा है ना उसका लास्ट पेज देखें, और उस लास्ट पेज पर क्या लिखा हुआ था, कृपया 27 को 4 से मल्टीप्लाई करें। देखो कितने बुद्धिमान थे, युक्तियां उनके पास बहुत थी, ये तो हमने उनके पूरे जीवन काल में देखा। विश्व कल्याण के कार्य में उन्होंने युक्तियों का बहुत प्रयोग किया, बहुत। युक्तियों के बिना सतयुग स्थापना हो भी नहीं सकती है, कलयुग में सतयुग स्थापन हो भी नहीं सकता है। आप में से भी बहुत सारे भाई बहने जो इस योग भट्टी में आए होंगे वो युक्ति लगा के ही आए होंगे, और ये तो शुरू से इतने बुद्धिमान थे, तो इनको मधुबन जाने की इस तरह से फिर छुट्टी मिल गई और मधुबन आए, नहा धो के फिर प्यारे बाबा से मिले, कुंज दादी लेकर आए थे, और जब बाबा से मिले बस पहली मुलाकात में बच्चा बाबा का हो गया और बाबा बच्चे के हो गए ना, कल्प पहले वाला सिक्की लद्दा मुरब्बा मुरब्बी लाडला बच्चा बाबा का। मनमोहिनी दीदी कहते थे कुंज दादी को कि इसका ख्याल रखना, इसकी खोपड़ी बहुत तेज है, अगर तो ज्ञान समझ में आ गया तो बहुत आगे जाएगा, कमाल करके दिखाएगा, और अगर समझ में ना आया तो डिस्ट्रक्टिव वर्क में भी बहुत लग जाते हैं ना, फिर वो ओपोजिशन पार्टी एंटी पार्टी वो फिर कितना नुकसान पहुंचाते हैं। पर ये तो प्यारे बाबा के नूरे रतन, बाबा के लाडले बच्चे थे, तो बाबा की गोद में ऐसे चले गए। तो कुंज दादी को आया कि मैं तो फ्री हो गई, काफी दिन तक इनको संभाला, इनकी पालना की, और अब मैं फ्री हो गई, अब बाबा जाने और ये जाने। तो इस तरह से भाई साहब का ये जन्म हुआ, वो बाबा के बच्चे बने। तो हमने उनको कैसे गुणों की मूर्त के रूप में देखा, उनकी जीवन की कुछ एक बातें मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ, उनके जीवन के वृतांत जो बाबा के पास आने के कुछ समय के अंदर अंदर ही आप देखेंगे कि कैसे उनके अंदर गुणों की धारणा पक्की हो गई थी। जो मैंने कहा कि हम सबका लक्ष्य क्या है, गुणों की धारणा, बाबा जो हमारे अंदर रोज ज्ञान के बीज बोते हैं, इन ज्ञान के बीजों से हमारे अंदर कौन से फल और फूल फलीभूत होते हैं, दिव्य गुणों के। जो हम योग तपस्या करते हैं, योग भट्टी करते हैं, जिसके लिए अभी भी हम सब यहाँ आए हैं, इन योग भट्टियों से हमारे अंदर क्या आता है, ईश्वरीय गुण दैवी गुण, गुणों की धारणा। हम सब जो सेवाएं करते हैं, सेवाओं में भी जब हम एक दूसरे के संबंध संपर्क में आते हैं, संगठन में आते हैं, तो उससे भी हमारे अंदर कौन सी धारणा होती है, गुणों की धारणा होती है। तो जब हमारे भाई साहब बाबा के बच्चे बने, तो बाबा का बच्चा बनने के कुछ समय के अंदर अंदर ही इनको बहुत तीव्र ऐसे ख्यालात चलते थे कि मुझे सेवा करनी है। सेवा का शुरू से जैसे इनको बहुत उमंग था, तो ये बहनों को कहा करते थे, दादियों को कहा करते थे, तो मेरे योग्य कोई सेवा हो तो आप मुझे वो सेवा जरूर बताना। तो एक बार कोई मधुबन जा रहे थे दिल्ली से, तो दादी जी ने जगदीश भाई साहब को एक कोई लेटर दिया कि आप रेलवे स्टेशन जाओ और उनको कंपार्टमेंट और कोच और सब डिटेल्स उनको दिया, और फलाने जो जा रहे हैं उनको जाकर के आप ये दे करके आओ। तो जब भाई साहब स्टेशन आए, उस कंपार्टमेंट के नजदीक पहुंचे, तो जिस व्यक्ति को वो ढूंढ रहे थे, तो खड़े थे खिड़की के पास ढूंढ रहे थे कि कौन है मधुबन जाने वाला, तो इतने में ही एक कुली आया और उसके सिर पर लकड़ी का बॉक्स बहुत बड़ा बहुत भारी वो था और उसमें कीले लगी हुई होती हैं। तो वो आया और आकर उसने वो लकड़ी की जो पेटी थी ना वो फेंकी, और जब वो फेंकी तो वो इनके पैर पर आकर के लगी और पैर से नाखून वो अलग हो गया, थोड़ा खून आने लगा। अब जब इन्होंने ज्ञान सुना था तो ज्ञान में टीचर बहन ने इनको क्या पढ़ाई थी कि जगदीश भाई विकार जो हैं वो बुरी चीज है ना, क्रोध करना अच्छा नहीं है। शिव बाबा कहते हैं कि क्रोध को छोड़ो। तो उस समय कहा कि जब मैंने ये सुना कि क्रोध विकार है ये अच्छा नहीं है इसको छोड़ना चाहिए, तो मुझे लगा ये तो सभी कहते हैं है ना, भक्ति मार्ग में भी सब कहते हैं, साधु संत गुरु लोग भी ये कहते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है कि क्रोध छोड़ना चाहिए और जीवन में शांति लानी चाहिए। पर कहा फिर दूसरा लेसन साथ ही साथ मेरे को टीचर ने क्या पढ़ाया था कि जगदीश भाई क्रोध नहीं करना है, और इसके साथ साथ ये ध्यान रखना कि आपके सामने परीक्षा आएगी और ये जो कर्म क्षेत्र है ना ये पूरी दुनिया ये बहुत बड़ा एग्जामिनेशन हॉल है, और इसमें जो परीक्षा आएगी वो आपके पास किसी के द्वारा भी आ सकती है, किसी भी वक्त आ सकती है और किसी भी स्थान पर आ सकती है। और जब वो परीक्षा आपके सामने आए तो आपको उस परीक्षा में पास जरूर होना है, आपको फेल नहीं होना है। कहा मुझे तब लगा इसमें थोड़ी कुछ नवीनता है। अब जब वो कुली ने वो पेटी फेंकी खून आने लगा, कहा मैं नौजवान था शरीर में गर्मी बहुत थी और उसने पेटी फेंकी, मैं शांत खड़ा रहा खून आ रहा है क्योंकि टीचर ने मेरे को पढ़ा के भेजा हुआ था कि क्रोध नहीं करना है, तो कहा कि मैं शांत खड़ा हूं। और फिर वो जो कुली था ना वो फिर खराब खराब बोलने लगा, गुस्से में आकर बोलने लगा कि ये जगह है खड़े होने की है? खड़ा होना नहीं आता है, ठीक जगह पर खड़े क्यों नहीं हो। तो कहा कि वो जो मैं अपने अंदर शांति की वो गुण की जो स्थापना कर रहा था ना कि टीचर बहन ने कहा शांत रहना है सामने कैसी भी परिस्थिति हो कैसी भी परीक्षा हो, तो जब उसने ऐसा ऐसा बोलना शुरू किया क्योंकि मैं यंग था तो मेरे को आया कि ऐसे काम नहीं चलेगा, तो वो जो गुस्सा जा रहा था ना और उसकी जगह जो मैं शांति अपने अंदर अनुभव कर रहा था वो गुस्सा फिर वापस आने लगा। तो जब फिर वापस आने लगा तो मेरे को फिर टीचर का ख्याल आया कि जगदीश भाई फेल नहीं होना पास होकर के आना है, तो कहा कि मैंने उस कुली को समझाने की कोशिश की। अब मैं उसको समझाने के लिए कुछ बोलूं वो फिर और खराब खराब बोलने लगा, उनकी लैंग्वेज तो फिर थोड़ी ऐसी होती है ना। तो कहा कि फिर मेरे मन में आया कि ब्रह्मा कुमारियों का ये जो ज्ञान है ना ये सेंटरों तक ठीक है, ये बाहर की दुनिया में नहीं चलने वाला। तो कहा कि फिर वो गुस्सा लौट आया जब वो खराब खराब बोलने लगा, मैं फिर मेरे को आया नहीं नहीं भाई फेल नहीं होना है, टीचर को जाके मुंह दिखाना है पास तो होके ही जाना है। तो कहा कि मैंने उसको फिर थोड़ा सा कुछ कहने की कोशिश की, फिर इतने में पब्लिक इकट्ठी हो गई, और जब पब्लिक इकट्ठी हुई तो उन्होंने फिर उस कुली को थोड़ा डांटना शुरू किया कि भाई देखो एक तो तुमने पेटी फेंकी और इनको इतना नुकसान पहुंचाया और इतना दर्द तकलीफ में है और ऊपर से तू इतना खराब खराब बोल रहा है, कुली को उन लोगों ने बोला। कहा मैं शांत खड़ा था, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, शांति के सागर की संतान हूं, शांति के सागर की शांति की किरणें मेरे ऊपर आ रही हैं, मैं अपने मन को शांत कर रहा था हाँ, और वो लोग कुली को समझा रहे हैं तो मैं शांत हूं, तो लोगों को लगा कि इसका तो लगता है स्क्रू ढीला है, हम बोले जा रहे हैं इसके लिए और ये अपना शांत खड़ा है, तो हमें क्या इतना बोलने की जरूरत है, है ना, तो सारी पब्लिक वो सब इधर उधर हो लिए। पर भाई साहब ने उसका जो अंत जो रिजल्ट सुनाया ना वो बहुत सुंदर है। तो कहा कि इतना लंबा चौड़ा ये जो सारा वार्तालाप हुआ तो उसमें उस कुली ने मेरे वाइब्रेशंस उसने महसूस किए, मेरी स्थिति उसने देखी और मेरा जो शांत मेरा मन मेरा मेरा इतना प्रेम वाला व्यवहार है ना, तो उसने उसके ऊपर जैसे छाप छोड़ दी। और फिर उस कुली ने मेरे वो पैरों में गिर पड़ा और उसने मेरे से माफी मांगी और उसने कहा आप महान हो। तो भाई साहब के दिमाग में जैसे ये शब्द जाके घर कर गए। तो भाई साहब ने कहा अभी तो मैंने एक ही विकार छोड़ा, क्रोध, वो भी अभी थोड़ा सा ही मैंने छोड़ा, और शांति का गुण क्या मैंने अपने अंदर लाया और ये मुझे कहता है आप महान हो। तो कहा कि अगर मैं सारे विकार छोड़ दूं और ब्रह्मा कुमारियां जो दिव्य गुण सिखाती हैं ना जीवन में गुणों की धारणा, अगर मैं सारे सद्गुण अपने जीवन में धारण कर लूं फिर तो मैं कितना ऊंच, कितना महान, कितना पूजनीय बन जाऊंगा। तो एक शांति का गुण उसने कितना बड़ा टाइटल दिला दिया आप महान हो। तो हमें भाई साहब के इस वृतांत से क्या सीखने को मिलता है, क्या सीखने को मिलता है? क्रोध बुरी चीज है, क्रोध अवगुण है, क्रोध विकार है, इसको हम सबको छोड़ना है। और कौन से गुण की धारणा करनी है? आज का टॉपिक है जीवन में गुणों का महत्व। तो प्रैक्टिकली हमें अपने जीवन में इस तरह से गुणों की धारणा करनी है। तो ये तो हुई शांति के गुण की बात। अब एक दूसरा वृत्तांत हम उनके जीवन का सुनते हैं, वो भी शुरू शुरू के दिनों की ही बात है जब वो प्यारे बाबा के बच्चे बने ही थे। और जैसे मैंने कहा कि उनका सेवाओं का पार्ट तभी से ही खुल गया था, तो प्यारे बाबा ने भाई साहब को मधुबन से पत्र लिखा कि बच्चे एक किताब लिखो जिसमें ब्रह्मा कुमारी की सारी शिक्षाएं आ जाएं, दिव्य गुणों की धारणा, ये पुस्तिका लिखो, बहुत बड़ी भी नहीं होनी चाहिए, बहुत छोटी भी नहीं होनी चाहिए, और इसमें सारे ज्ञान का जैसे सार आ जाए। तो बाबा की आज्ञा का उन्होंने पालन किया और किताब लिखनी शुरू की। कमला नगर सेंटर पर वो रहते थे और कोर्स रूम था, वो बहुत छोटा रूम था जहां बैठ करके अपने वो राइटिंग बोर्ड के ऊपर वो लिखा करते थे, घुटने फोल्ड कर लेते थे क्योंकि उन दिनों में तो कोई ऐसे कोई ऑफिस नहीं था, कोई असिस्टेंट नहीं होते थे, कोई टाइपराइटर नहीं थे, कुछ भी नहीं था। तो घुटने फोल्ड करते और उसी कमरे में 11-12 दादियां, उनका आना जाना, टेंट बहुत छोटा था। तो कहा कि मैं पैर भी नहीं फैला सकता था क्योंकि बड़ों के आगे पैर फैलाना ये तो बड़ों का निरादर है। तो मैं घुटने फोल्ड करके बैठा रहता और मैं लिखता रहता। और बाबा तो टाइम भी शॉर्ट नोटिस पे होता था बाबा का सब कुछ, तो थोड़े से टाइम में उन्होंने वो किताब पूरी की। और वो किताब जब पूरी की तो बाबा को संदेश भिजवाया, तो बाबा मैंने वो पुस्तिका लिख ली है। तो बाबा ने कहा अच्छा बच्चे, वो जो आपने लिखी है ना वो 12 दादियों को दिखाओ, अब उनसे पास कराओ। तो उन्होंने वो किताब फिर एक एक करके सभी दादियों को दिखाई। और उन दिनों में हमारी सभी वरिष्ठ दादियां सिंध से आए थे, हिंदी तो बाद में जाकर के शुद्ध हुई, तो उस समय तो सिंधी हिंदी जैसे इनकी खिचड़ी भाषा थी। तो एक एक करके सभी दादियों ने उसमें काफी सारी करेक्शंस की, एक ने की, फिर दो ने की, फिर तीसरे ने, फिर चौथे। और करेक्शन होते होते जब आगे 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 वो पहुंचती ना वो किताब, तो अगले जो जिनके हाथों में वो जाती, पांचवां छठी दादी सातवीं, वो सोचते ये सब क्या लिखा है जगदीश भाई ने। कहा कि मैं उनको बोल भी नहीं सकता था कि ये मेरी भाषा नहीं है, इसमें काफी कुछ अब दूसरों का ऐड हो चुका है और दादियों का भी इसमें बहुत कुछ अब मिक्स हो चुका है। तो कहा कि 12 दादियों को दिखाने के बाद उसमें से शायद थोड़ा सा ही मेरा लिखा हुआ बचा होगा, बाकी सारी खिचड़ी भाषा वो दादियों की। तो कहा कि फिर बाबा को फिर बताया, तो बाबा आपके आदेश अनुसार मैंने दादियों को वो दिखा दी है पुस्तिका, दिव्य गुणों की धारणा पर थी। तो बाबा ने कहा अच्छा बच्चे मधुबन आओ। तो कहा कि मैं मधुबन आया, तो उन दिनों में कोटा हाउस में थे बाबा। तो कहा कि दो छोटे कमरे थे, एक हॉल था, एक कमरे में बाबा रहा करते थे। तो मैं जब वहां पर पहुंचा तो वहां पर भी दिल्ली से, जयपुर से और एक दो तीन और स्थानों से कोई वरिष्ठ भाई आए हुए थे। तो बाबा ने कहा कि बच्चे इनकी मीटिंग रखो और अब इनको दिखाओ, इनसे पास कराओ। तो कहा कि उन चार पांच भाइयों ने फिर वो पुस्तिका देखी और वो देखने के बाद मतलब उन्होंने भी कुछ कुछ करेक्शंस करे और किसी को कुछ विशेष वो पसंद नहीं आई। फिर फाइनली बाबा ने एक छोटी मीटिंग रखवाई जिसमें मम्मा थी, विश्व किशोर भाऊ थे और कहा एक और भाई थे। तो जब उस छोटी मीटिंग में वो पुस्तिका को रखा गया तो उसमें वो जो दूसरे भाई थे ना, विश्व किशोर भाऊ नहीं, मम्मा भी नहीं, वो जो दूसरे भाई थे, तो कहा कि उन्होंने कहा कि बाबा कहता है विनाश तो सामने है ना, मौत का बाजार गर्म होने वाला है, ये पुस्तिका तो पता नहीं कब छपेगी, कब है ना प्रिंटिंग होगी और ये कब तक सब तक पहुंचेगी। तो मैं तो ये समझता हूँ कि पुस्तिका नहीं छपनी चाहिए, इसके बजाय अगर पैम्फलेट्स प्रिंट हो तो उसमें खर्चा भी कम आएगा और वो सब तक पहुंच जाएंगे, बाबा का संदेश सब तक पहुंच जाएगा। तो भाई साहब ने कहा कि प्रायः तो ये होता है किताब लिखने से पहले डिसाइड किया जाता है कि भाई प्रिंट होनी भी है या नहीं होनी, या तो सब कुछ हो हुआ के लास्ट में फिर फाइनल ये किया गया कि पुस्तिका नहीं छपेगी और पर्चे छपेंगे, उसे जल्दी जल्दी प्यारे बाबा का संदेश सब तक पहुंच जाएगा। तो कहा कि वो छोटी मीटिंग भी हो गई और उसके बाद फिर मैं कोटा हाउस में ही हॉल से मैं गुजर रहा था, दो दरवाजे थे, एक तरफ से मैं जा रहा था अंदर, दूसरी गेट से प्यारे बाबा आ रहे थे। तो कहा कि जब हम एक दूसरे के आमने सामने आए तो प्यारे बाबा ने मेरे को बहुत प्यार भरी दृष्टि दी और दृष्टि देते हुए बाबा ने पूछा बच्चे अच्छा क्या हुआ भला उस मीटिंग का। तो कहा मैंने सुनाया बाबा डिसाइड ये हुआ है कि पंपलेट्स प्रिंट होने चाहिए और पुस्तिका न छपे तो अच्छा है। तो देखो वरदाता ने कैसे उनके ऊपर वरदान की वर्षा की। तो प्यारे बाबा ने बहुत बहुत प्यार से कहा, मेरे को गले लगाया और मुझे अपनी शक्तिशाली दृष्टि देते ना, मुझे अपनी भुजाओं में लेते हुए बाबा ने वरदान दिया कि बच्चे आज के बाद बाबा कहता है कि आप जो भी लिखो वो आपको किसी को भी दिखाने की जरूरत नहीं है, किसी से भी पास कराने की जरूरत नहीं है, आप जो लिखोगे वो माना जाएगा, आप जो लिखो आप वो प्रिंट करा सकते हो, बाबा आपको अथॉरिटी देता है, बाबा आपको विल करता है। ये कितना बड़ा वरदान था ये प्यारे बाबा का जगदीश भाई साहब को। अच्छा अब ये वृतांत आप सबको क्यों सुनाया मालूम पड़ा? अब भाई साहब ने जो उसका सार सुनाया कितना सुंदर, ये जो पुस्तिका थी ये थी दिव्य गुणों की धारणा पर। अब इस पुस्तिका में उन्होंने एक एक दैवी गुण का वर्णन किया था और दैवी गुण कौन कौन से हैं? सम्मान, शुभ भावना, शुभ कामना, निश्चय, धैर्यता, मधुरता, भगवान के ऊपर भरोसा, विश्वास, है ना, ये सारे दैवी गुण, शांति। तो कहा कि बाबा मेरी परीक्षा ले रहा था। इतने सबसे जो बाबा ने पास करवाया, जो मुझे बाबा ने कहा इसको दिखाओ, इसको दिखाओ, इसको दिखाओ, तो बाबा मेरी परीक्षा ले रहा था। और देखो मैं उस परीक्षा में पास हो गया। 12 दादियों ने उसमें इतना काटा पीटा सब किया, उसकी खिचड़ी भाषा बना दी, उस पुस्तक का क्या से क्या कर दिया, लेकिन मेरे मन में दादियों के प्रति बहुत बहुत रिगार्ड था। मैं हमेशा ये मानता था उनको आदि से ही कि ये बहुत पवित्र दादियां हैं, ये श्रद्धे हैं। इन दादियों की पवित्रता की तुलना किसी से की नहीं जा सकती, इतने निर्मल हृदय की हैं। इस ईश्वरीय पढ़ाई में ये मेरे से बहुत आगे हैं, विकारों को छोड़ने की पढ़ाई में ये मेरे से बहुत आगे हैं। दुनियावी ज्ञान में हो सकता है कि मैं आगे हूं, लेकिन विकारों को छोड़ने की पढ़ाई उसमें ये मेरे से बहुत आगे हैं, ये निर्मल हृदय की हैं। तो भले दादियां सब करते जा रहे थे, करते जा रहे थे, परंतु इनके मन में दादियों के प्रति रिगार्ड जरा भी कम नहीं हुआ। और धैर्यता भी चाहिए, धैर्यता भी चाहिए। हम लिखें, हम 1, 2, 4 को दिखाएं और उसमें वो कुछ काटा पीटा करें, हम तो अधीरे हो जाएं। पता नहीं अब आगे क्या होना है, क्या होना है, क्यों मेरे से इतनी मेहनत करा रहे हो, क्यों मेरा टाइम वेस्ट करा रहे हो। लेकिन धैर्यता, मन में शांति, शिव बाबा के ऊपर निश्चय, भगवान पर भरोसा, वाणी में मिठास, सबके साथ बहुत सुंदर संबंध। तो बाबा ने देखा बच्चा जो है वो दिव्य गुणों की धारणा में पास हो गया। अब इस बच्चे की लेखनी जब चलेगी, जो लिखेगी, पढ़ने वालों के ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा। और आज ये जगदीश भाई साहब के लिटरेचर की ये विशेषता है कि जो भी उनका साहित्य पढ़ता है उसके जीवन में परिवर्तन ना आए ये हो नहीं सकता। अद्भुत जीवन कहानी जिन्होंने नहीं पढ़ी, आज भी मैं आप सबको कहूंगी जिन्होंने नहीं पढ़ी वो जरूर पढ़ें। अद्भुत जीवन कहानी पार्ट 1 पार्ट 2, हजारों लाखों की जिंदगियां बदल दी इन दो किताबों ने, पार्ट 1 पार्ट 2। इसके अलावा भाई साहब ने कितना सारा साहित्य लिखा, कर्मों की गुह्य गति, परमात्मा का परिचय, दिव्य गुणों की धारणा, मृत्यु पर विजय, बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी हैं। अब इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि हमारी वाणी में भी बल कब आएगा, जो हम दूसरों को शिक्षाएं देते हैं, हम दूसरों को बोलते हैं कि ये तुम्हारा अवगुण है, ये तुम्हारी कमी है, ये तुम्हारे अंदर विकार है, बुराई है, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, छोड़ते क्यों नहीं हो, सुधरते क्यों नहीं हो, ये गुण अपने अंदर लाओ, ये विशेषता अपने अंदर लाओ, अपने को ठीक करो। तो कब आएगा हम सबकी वाणी में भी वो जौहर, जब हमारे खुद के जीवन में वो दैवी गुण होंगे। तो जीवन में दिव्य गुणों का इतना महत्व है। पंडित की तरह भाषण करने वाले बहुत हैं, भरमार है। आज दुनिया को क्या चाहिए, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, ऐसे ही ना। तो इस समय हम सबको, शिव बाबा निराकार हैं, गुणों के सागर, उनको फॉलो करना हम सबके लिए कठिन है, पर ब्रह्मा बाबा ने वो हम सबके लिए सहज कर दिया। ब्रह्मा बाबा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बने बच्चों के आगे। फिर ब्रह्मा बाबा को फॉलो किसने किया, हमारे इन सब महारथियों ने, हमारी वरिष्ठ दादियों ने और इन वरिष्ठ भाइयों ने। तो ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य रहा जो हमने उनको बहुत नजदीक से देखा, हमने उनकी पालना ली, हमने उनका प्यार दुलार लिया, उन्होंने हमारा रख रखाव किया, हमारी देखभाल की, और जो हमने प्रैक्टिकल उनके जीवन में देखा वो अंदर चला गया ना? देखा हुआ वो फिर शंख का रंग लगता है ना, कहते रफ डफ पत्थर वो भी सागर की लहरों से टकराते टकराते चिकने हो जाते हैं, गोल हो जाते हैं। लोहा पारस के साथ रहता है
तो उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ असर आता है। तो भाई साहब के साथ रह करके जो हमने सीखा वो इतना गुप्त है, इतना महीन है, इतना उच्च धारणाएं हैं कि शायद मैं शब्दों में उसको बयान नहीं कर सकती हूं। मैथमेटिक्स में डिजिट्स होते हैं ना, 9 को अभिमान आया एक बार कि मैं 8 से बड़ा हूं, 8 को आया मैं 7 से बड़ा हूं, उसने 7 को नीचा दिखाया, 7 ने अहंकार में आके फिर 6 को अपने से नीचा दिखाया, है ना, उसकी बेइज्जती की, मैं तेरे से बड़ा हूं, इस तरह से सभी अंकों ने। और जब 1 का नंबर आया तो 1 की महानता देखो, 1 0 के साथ जाके खड़ा हो गया और उसने 0 को भी क्या से क्या बना दिया। तो हम 0 थे, हम जब बाबा के पास आए तो हम 0 थे, पर हमारे जगदीश भाई साहब वो 1 थे, वो हमारे साथ खड़े हुए, तो आज उन्होंने हमारा जीवन क्या से क्या बना दिया। तो भाई साहब के जीवन के ऐसे बहुत सारे वृत्तांत हैं, बहुत सारी बातें हैं, उनकी दृढ़ता बताती हूं दैवी गुणों में। आप हर एक वृत्तांत से कोई ना कोई गुण सीखेंगे। ये भी शुरुआती दिनों की ही बात है, जब वो सोनीपत से दिल्ली आया करते थे मुरली सुनने के लिए, तो प्रायः वो ट्रेन से आते थे और बिजी बहुत रहते थे अपने कॉलेज में, अपने कार्यों में, तो दूर से ही जब उनको आवाज आती थी ट्रेन की सायरन, तो वो अपना काम सब जल्दी से समेट के ट्रेन पकड़कर दिल्ली पहुंचा करते थे, स्टेशन सामने ही था। तो कहा कि एक दिन ट्रेन मिस हो गई, मैं अपने कार्यों में इतना व्यस्त था मुझे पता नहीं चला और ट्रेन निकल गई। अब दिल्ली में बाबा आए हुए हैं कमला नगर में और बाबा मुरली चला रहे हैं, मैं बाबा की मुरली मिस कैसे करूं। तो कहा कि मैंने देखा सामने मालगाड़ी खड़ी है, तो मैं स्टेशन गया वहां पर और मैंने मालगाड़ी के जो गार्ड था उसको बोला तो मेरे को दिल्ली जाना है। तो उस गार्ड ने कहा ठीक है, हा? ये पैसेंजर ट्रेन नहीं है, ये मालगाड़ी है, मालगाड़ी में माल जाता है, इंसान नहीं जाते, तो आप इसमें दिल्ली नहीं जा सकते हो। इन्होंने फिर उसको रिक्वेस्ट की कि देखो कैसे भी करके मुझे जाना जरूर है, मेरा बहुत अर्जेंट काम है, और ये ट्रेन के मालगाड़ी के डब्बे में अपना पैर ऊपर रखने की कोशिश करने लगे उसको कहते हुए। उसने कहा कि कुछ भी हो जाए, कितना भी अर्जेंट हो, इससे आप दिल्ली नहीं जा सकते। तो कहा वो अपनी बात कहता, मैं पैर नीचे कर लेता। फिर मेरे को याद आता बाबा आया होगा, बाबा मुरली चलाता होगा, मैं बाबा की मुरली मिस करूंगा, ये तो कल्प कल्प मेरी मुरली मिस हो जाएगी। फिर जैसे ही मेरा ये चिंतन चलता मैं पैर ऊपर रख देता कि भाई मेरे को कृपा करके जाने दो, मुझे जाना जरूर है। फिर वो अपनी बात कहता कि देखो अगर आपको मेरी वर्दी उतरवानी है तो आप चले जाओ, इसमें देखो इसमें अलाउड नहीं है, आप नहीं जा सकते हो। तो फिर मेरा पैर नीचे, तो वो अपनी बात कहता पैर नीचे, मेरे को अपनी याद आती बात तो पैर ऊपर, बट मैंने मन में ये पक्का ठान लिया था तो मुझे किसी भी हालत में प्यारे बाबा के महावाक्य मिस नहीं करने हैं, मेरी मुरली मिस नहीं होनी चाहिए, दृढ़ता। अब यहां कौन सा गुण पता चल रहा है, भगवान पर निश्चय, भगवान पर भरोसा और दृढ़ता, भगवान से प्यार, अटूट प्यार, उसकी मुरली से अटूट प्यार। तो कहा कि जब कैसे भी करके वो नहीं माना तो मैं फिर स्टेशन मास्टर के पास गया, उसको मैं बोल के आया कि मैं स्टेशन मास्टर के पास जा रहा हूँ। स्टेशन मास्टर के पास गए तो फिर जाकर के उनको बोला कि मेरे को दिल्ली जाना है, और ये गार्ड जो है वो मुझे, उसने कहा गार्ड तो ठीक ही कह रहा है। तो फिर उसको समझाने लगे भाई साहब कि देखो मेरे को कैसे भी करके जाना जरूर है। तो उसने कहा कि ये तो हमारी नौकरी के ऊपर बात आ जाएगी, अगर आप ये चाहते हो हम डिसमिस हो जाएं तो आप भले जाओ। तो अब उससे भी हो रही है बात, और इनके अंदर बार बार यही चिंतन चले, बाबा आया होगा, मुरली चलाता होगा, इस कल्प मिस हुई तो कल्प मिस होगी। फिर उसको समझाएं, आखिर फिर वो मान गया स्टेशन मास्टर, उसने टिकट बना दी और ये टिकट लेके खुशी खुशी गार्ड के पास पहुंच गया। उसने कहा वो तो मूर्ख है, उसका तो दिमाग खराब हो गया, उसको तो अपनी नौकरी की परवाह नहीं है, और वो तो मेरी भी नौकरी है, मेरे को भी डिसमिस कराएगा। तो कहा कि अब ये फिर ना माने। अब लास्ट में आप देखिए कि बाबा की याद कैसे कमाल करती है। तो भाई साहब ने बहुत सुंदर ये सुनाया कि जब ना गार्ड माना ना स्टेशन मास्टर माना, तो अंत में फिर मैंने बहुत दिल से बाबा को याद किया, बाबा ये जो गार्ड है ना ये मुझे गाड़ी चढ़ने नहीं दे रहा है, मुझे आपकी मुरली सुनने के लिए आना है, बाबा इसकी बुद्धि को पलटो। तो कहा, फिर मैंने बाबा को याद करके जब उसको कहा फिर वो मान गया। और इस तरह मालगाड़ी में बैठकर फिर मैं आया दिल्ली। और हम सब क्या बहाने दे देते हैं मुरली के लिए, रात को थोड़ा बुखार हो गया था ना, कल मेहमान आए थे ना, सोने में थोड़ी देरी हो गई थी ना, ऑनलाइन सुन ली थी ना, कितने बहाने हम सब देते हैं। और वो देखो दिल्ली से सोनीपत एक भी दिन प्यारे बाबा की मुरली उन्होंने मिस नहीं की। तो कौन सा गुण पता चला? दृढ़ता, निश्चय, भगवान पर भरोसा, भगवान से प्यार। तो ये गुणों ने उनका जीवन महान बनाया। अब एक और वृत्तांत उनके जीवन का सुनाती हूँ, फिर मैं उनके साथ जो रह करके मैंने जो उनको पर्सनली देखा उनके अंदर और कौन कौन से गुण, अगर टाइम बचा तो वो फिर मैं आपके साथ थोड़ा शेयर करूंगी। तो बाबा ने एक बार उनको राष्ट्रपति को पत्र लिखने के लिए कहा ना, मधुबन में रात का टाइम था, रात्रि क्लास। तो बाबा ने कहा कि बच्चे राष्ट्रपति को पत्र लिखना है, कौन कौन लिखेगा? उसमें कई चंद्र थे, जिसमें भाई साहब कहते हैं एक जगदीश चंद्र भी था मैं। तो कहा कि तीन चार भाइयों ने हाथ खड़ा किया और हम लोग रात्रि क्लास पूरी हुई, कमरे में गए और लेट तो हो ही गया था, सोने का टाइम हो गया था। तो वो जो तीन चार भाई थे ना, तो उनको क्या ख्याल आया, बाबा तो बुजुर्ग हैं, सुबह तक भूल जाएंगे, बाबा दोबारा कभी कहेंगे तो फिर लिख देंगे, जैसे उन्होंने हल्काई से लिया। और वो तीनों चारों अपना आराम से सो गए और इन्होंने प्यारे बाबा को जो बाबा ने कहा था राष्ट्रपति को पत्र लिखने के लिए, वो कार्य करना इन्होंने शुरू किया, पत्र लिखना शुरू किया। तो कहा कि थोड़ी देर में ही लाइट चली गई। अब लाइट चली गई तो अगर हम सब होते उस टाइम तो हम सब भी आराम से बहाना दे देते, बाबा रात को लाइट ही नहीं थी, नहीं कैसे लिखते, तो हम भी सो जाते। पर इनके अंदर क्या था, भगवान ने मुझे आज्ञा दी है, आज्ञाकारिता का गुण। एक आज्ञाकारिता के गुण ने इनको भगवान ने इनको कितना बड़ा वरदान दिया, अब आप ये देखिए। तो कहा कि मैंने टॉर्च निकाली और टॉर्च की लाइट में मैंने लिखना शुरू किया। थोड़ी देर में टॉर्च के सेल वो भी ओम शांति हो गए, कड़ाके की ठंड थी ना उन दिनों में, तो माउंट में बहुत ठंड होती थी। अभी भी हम सुन रहे थे यहाँ पर पांडव भवन में आने के बाद कि इन दो सालों में यहाँ पर ज्यादा गर्मी पड़ी है, पहले कभी इतनी गर्मी नहीं होती थी। आप देख रहे हैं ना यहाँ पर कूलर एसी उसकी कोई इस तरह की व्यवस्था नहीं है, उसका कारण यही है। तो यहाँ पर कभी इतनी गर्मी नहीं होती थी, और उन दिनों तो कोई शॉप्स नहीं थी, कोई ट्रैफिक नहीं होता था, कोई टूरिस्ट नहीं आते थे और वातावरण भी और होते थे, तो बहुत ज्यादा ठंड उन दिनों में पड़ती थी। तो कहा मैंने स्ट्रीट लाइट में, मेरे को संकल्प आया जाकर बैठूं और ये पत्र का कार्य पूरा करूं, और मैंने स्ट्रीट लाइट में बैठ करके फिर वो पत्र लिखना शुरू किया। अब एक बार लिखा, लिखने के बाद फिर उसमें काटा पीटा ना, तो करेक्शंस किए मैंने, भगवान को दिखाने हैं, हाईएस्ट अथॉरिटी को दिखाना है, पेपर एकदम साफ होना चाहिए, शब्द मोतियों की तरह होने चाहिए ना, इतनी बड़ी अथॉरिटी को दिखाना है। तो कहा मैंने ऐसे उसमें करेक्शंस की और एकदम से ठीक ठाक जब मैंने पत्र लिख लिया पूरा, फिर मैंने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, और उसी में ही सुबह के 3:30-4 बज गए, और मैं कमरे की ओर आया वापस। तो कमरे में पहुंचकर उन भाइयों ने अमृत वेले का गीत बज रहा था, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया आज, तो वो सजनिया तो सारी जाग रही थी तो उन्होंने देखा तो भाई जगदीश भाई बाहर से आया है, वो समझ गए थे कि इसने अपनी नींद जो है ना उनकी भाषा में इसने फालतू खराब की। तो कहा कि फिर मैं नहा धो के फ्रेश होके क्लास में पहुंचा, उन दिनों में 5 बजे क्लास होती थी, जल्दी होती थी क्लास। तो प्यारे बाबा ने मुरली चलाई और मुरली पूरी हो गई, बाबा ने कुछ पूछा ही नहीं, और बड़े खुश वो लोग कि हमें तो पहले ही पता था कि बाबा तो इतनी बड़ी आयु है ना, 60 साल के तो बाबा जब सिंध हैदराबाद में शिव बाबा की प्रवेशता हुई थी तभी थे, और माउंट आबू में आए होंगे तो बाबा की उस समय 52 में जगदीश भाई साहब आए, तो कितनी आयु होगी ना बाबा की। तो वो तो पहले ही सोच रहे थे कि बाबा तो बुजुर्ग हैं, भूल भाल जाएंगे सुबह तक, तो खुश हो रहे थे कि काम का इसने नींद खराब की, मुझे ऐसे से देखते थे। तो क्लास के बाद फिर बाबा बच्चों को पहाड़ी पर लेकर के जाते थे, तो बाबा फिर सब बच्चों को पहाड़ी पर लेकर के गए। तो प्यारे बाबा ने वहां पर फिर सबसे चिट चैट की, और वहां पर भी बाबा ने कुछ नहीं पूछा, वो और खुश हो गए। पर सब पूरा करने के बाद एकदम लास्ट में अचानक से बाबा ने पूछा, अच्छा बच्चे रात्रि को प्यारे बाबा ने अच्छा बच्चे रात्रि को बाबा ने जो काम दिया था वो किसने किया। तो कहा कि मैं तो ऐसे आंखें करके बैठा था, उन्होंने ही मेरी तरफ से बाबा को जवाब दिया, बाबा हमने नहीं जगदीश भाई ने किया है। तो बाबा ने कहा अच्छा बच्चे भला दिखाओ, तो उन्होंने बाबा को वो पत्र दिखाया, और जब उन्होंने बाबा को वो पत्र दिखाया तो प्यारे बाबा ने उनको क्या वरदान दिया मालूम है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का साहित्य जितना भी लिखा जाएगा वो आपके द्वारा लिखा जाएगा। कहा मैं कोई बहुत बड़ा लेखक तो था नहीं, कोई बहुत बड़ा विद्वान नहीं था, मेरी लेखनी कोई बड़ी करामाती तो थी नहीं, हाँ मैं अपनी बात को सहज सरल स्पष्ट शब्दों में कहना जानता था बस, वो मैंने पेपर पे उतार दिए थे, और मैंने बाबा को वो एक छोटा सा अपना श्रद्धा का वो पुष्प अर्पण किया, भगवान ने आज्ञा की और एक छोटा सा श्रद्धा का पुष्प मैंने क्या अर्पण किया, और भगवान ने मेरे को वरदान दे दिया इतना बड़ा। और मेरे मन में क्या आया कि जब बाबा ने मुझे ये वरदान दिया है तो बाबा ही मेरी बुद्धि रूपी गागर में ज्ञान का सागर उतारेगा और वही अपना कार्य कराएगा। तो देखो यहां पर हमें आज्ञाकारिता का गुण उनसे सीखने को मिलता है। हम सब आज भी प्यारे बाप दादा की मुरली नित्य सुनते हैं, उसमें बाबा हमको प्यार भी देते हैं, सावधानियां भी देते हैं, निर्देश भी देते हैं, संदेश भी देते हैं, आज्ञाएं भी देते हैं। देते हैं ना बाबा आज्ञाएं भी, और बाबा क्या कहते हैं, बच्चे तुम मेरी आज्ञा पर चलो, तुम चल कर तो देखो। तो अगर हम आज भी बाबा की आज्ञाओं का पालन करें तो बाबा अभी भी अव्यक्त रूप में हम बच्चों के ऊपर वरदानों की वर्षा कर रहे हैं, हमको फलीभूत करता रहेगा बाबा। तो ये गुण हमें उनके इस प्रैक्टिकल उदाहरण से सीखने को मिलता है। तो जगदीश भाई साहब ऐसे वरदानी आत्मा थे, प्यारे बाबा ने उनको संजय का, दधीची ऋषि का, गणेश का टाइटल दिया था। भक्ति मार्ग में गणपति की बहुत पूजा होती है, सरस्वती माँ की बहुत पूजा होती है, विघ्नों का विनाश करने के लिए गणपति पूजा, सरस्वती माँ उनसे विद्या मांगते हैं, विद्या की देवी सरस्वती माँ। तो एक बार बाबा, मम्मा और भाई साहब बैठे थे, तो प्यारे बाबा ने मम्मा को कहा, मम्मा आप तो विद्या की देवी हो, सरस्वती माँ, भक्त भी आपसे विवेक मांगते हैं, बुद्धि मांगते हैं, विद्यार्थी आपसे विद्या मांगते हैं, तो हे विद्या की देवी सरस्वती, आप जगदीश बच्चे की बुद्धि में बैठ गई हो। तो मम्मा ने रूहानी मुस्कान चेहरे पर, और मम्मा ने कहा, जी बाबा। तो कहा, साक्षात विद्या की देवी सरस्वती माँ ने भी मुझे वरदान दे दिया, मैं तो मालामाल हो गया, मैं तो भरपूर हो गया। तो साक्षात विद्या की देवी सरस्वती माँ, उनको इन दो आंखों ने नहीं देखा है, लेकिन विघ्न विनाशक गणपति उनको हमने देखा है। ये हमारा कोई कम भाग्य है, ये बहुत बड़ा भाग्य है, बहुत बड़ा भाग्य है। तो भाई साहब ने छोटेपन से हमें पालना दी है, बहुत छोटी सी आयु में ही हम ज्ञान में आ गए थे, और मैं थर्ड स्टैंडर्ड में थी जब से उनकी दृष्टि हमारे ऊपर पड़नी शुरू हुई। तो स्कूल और कॉलेज डेज में तो उनसे बीच बीच में ही मिलना जुलना होता था, पर कॉलेज कंप्लीट करते ही मैं बाबा के घर आ गई, और अभी 37 इयर्स हो गए बाबा की सेवाओं में जीवन समर्पित किए हुए। और सेवा केंद्र पर आने के पश्चात हम उनके बहुत बहुत नजदीक आ गए। यह भी मैं मानती हूँ कि पुण्य कर्मों का प्रताप होगा, इस जन्म में तो कोई विशेष पुरुषार्थ नहीं किया है, मैं आत्मा ने कोई विशेष पुरुषार्थ मुझे नहीं लगता किया है, कोई मेहनत की है, बहुत बहुत सब कुछ सहज लगा है, सहज मिला है। वरदानों से ऐसे लगता है कि पल रही हूँ और उड़ रही हूँ। तो ये भी ड्रामा में एक लकी चांस हमको मिला। कितनी सारी हमारी ब्रह्मा कुमारी टीचर बहनें हैं जिनको दादियों का सानिध्य नहीं मिला, उनके नजदीक जाने का भी बहुत चांस नहीं मिला, लेकिन हम दादियों के भी अंग संग रहे, और साथ साथ इस विशेष आत्मा के तो बहुत ही नजदीक रहने का हमको चांस मिला। तो भाई साहब के अंदर हमने बहुत सारे गुण देखे, बहुत सारी विशेषताएं देखी। अभी जितना समय है उस समय के अनुसार उनकी एक दो बातें मैं आप सबके साथ और शेयर करती हूँ जो मैंने उनसे अपने जीवन में सीखी हैं। भाई साहब के अंदर जो आज हम दिव्य गुणों की बात कर रहे हैं, जो मैंने जिस पराकाष्ठा में उनके अंदर ये गुण देखा है, वो अन्य किसी के अंदर अभी तक ऐसा नहीं देखा है। कल हम शीलू दीदी से भी सुन रहे थे कि कई आत्माएं जब शरीर छोड़ के जाते तो कहते हैं इनके जैसा कोई नहीं था, इनके जैसा कोई हो ही नहीं सकता, और कोई जाते तो कहते अच्छा हुआ गया। तो जगदीश भाई साहब भी ऐसी एक विभूति, महान आत्मा, ड्रामा में जिनका बहुत ही अद्भुत पार्ट रहा है इस यज्ञ को विश्व स्तर पर लाने में, है ना, बाबा की सेवाओं को आज जो हम देख रहे हैं इतनी फलीभूत हो रही हैं, यहाँ तक पहुंचाने में विंग्स की सेवाएं भी कैसे उन्होंने शुरू की, कई नए प्रोजेक्ट्स उनके द्वारा शुरू हुए, तो उनके अंदर मैंने देखा गंभीरता, वो जिस पराकाष्ठा में समाने की शक्ति उनके अंदर देखी, वो भी अपने आप में बहुत विशेष बात है, क्योंकि उनके संबंध संपर्क में जो भी आते थे वो निसंकोच अपने दिल की बात उनसे कर लेते थे। हरेक को जैसे उनके ऊपर इतना विश्वास बैठ जाता था कि जैसे हम बाबा को ही अपनी बात सुना रहे हो, हम भाई साहब को सुना रहे हैं, 100% सबको होता था तो ये बात किसी अन्य तक नहीं जाएगी, और ऐसा होता भी था। भाई साहब माना भाई साहब, जैसे बाबा को आपने बाबा के कमरे में सुनाई, कहां जाएगी वो बात। जगदीश भाई साहब को साकार में किसी ने सुनाई, कभी किसी तक नहीं जाएगी। जो बात जिसने सुनाई उसका उनको समाधान भी करना है, जब तक नहीं कर लेते थे तो चैन नहीं पड़ता था, संतुष्ट करते थे हर एक को, और अपने चित्त पर भी फिर वो बात नहीं रखते थे, नहीं तो हमारे इम्प्रेशंस चेंज हो जाते हैं ना किसी के बारे में, जब हमको कोई ऐसी कुछ जानकारी मिलती है, कुछ व्यक्तिगत उसके जीवन के बारे में हमें पता चलता है। लेकिन उनका चित्त भी बहुत निर्मल और बहुत ही पवित्र था, तो ये मुझे बहुत खुशी है, मुझे बहुत नशा है कि मुझे एक ऐसे भाई मिले। शायद कोई और हो तो वो ये शिकायत करता, उनके एकदम अंग संग रहने वाला, कि भाई साहब मैं तो, हम तो आपके हैं ना, आपसे तो हमारा बहुत अटूट प्रेम है, आपके लिए तो हमारे दिल में इतना रिगार्ड है, अगर आप कोई बात हमें बताएंगे भी तो हम थोड़े किसी को बताएंगे। कोई और होता तो शायद ऐसा सोचता, लेकिन मैंने हमेशा ऐसे सोचा कि मुझे एक ऐसे भाई मिले जिन्होंने कभी किसी का विश्वासघात नहीं किया, जिन्होंने भी उनके ऊपर ट्रस्ट किया उन्होंने कभी किसी का ट्रस्ट ब्रेक नहीं किया। हम कितने भी नजदीक थे उन्होंने हमें कभी भी कोई भी बात की भनक भी नहीं लगने दी, कभी पता भी नहीं चलने दिया। तो वो खुशी है शिकायत के बजाय, नहीं तो यूजुअली तो ऐसा ही होता है ना, साथ रहने वाला थोड़ा रूठ जाता है, आप मुझे बाहर क्यों भेज देते हो, भाई साहब आप मेरे साथ शेयर क्यों नहीं करते हो, ये बात कोई विशेष थोड़ी है। हमें कई बार खड़ा भी नहीं होने देते थे जबकि नॉर्मल बात भी हो रही होती थी, जब कोई कितना भी उनके नजदीक वाला हो खड़ा भी नहीं होने देते थे, कहते थे सामने वाले को वाइब्रेशन पहुंच जाएगा कि कोई है वहां, मान लो। ऐसी समाने की शक्ति हमने उनके अंदर देखी, तब वो हंसी हंसी में कहते थे गणपति का पेट भक्ति मार्ग में इतना बड़ा दिखाया है ना, तो इस पेट में बहुत कुछ पड़ा हुआ है। तो ऐसे वो अपने अंदर बातों को समाते थे, चाहे वो विश्व स्तर की हो, यज्ञ के कारोबार को लेकर हो, हम पुरुषार्थियों के पुरुषार्थ में जो आने वाले विघ्न बाधाएं हैं, अनेक जन्मों के पुराने संस्कार प्रकट हो जाते हैं ना, तो कैसे हम सब इस मार्ग पर और आगे कदम बढ़ा सकें, उसके लिए उनसे सब गाइडेंस लेने के लिए आते थे, राय सलाह लेने के लिए आते थे, तो सब उनको सुनाकर निश्चिंत हो जाते थे कि बस अब ये बात कहीं दूसरे तक नहीं जाएगी। तो क्या हम सबको ये गुण नहीं सीखना चाहिए, गंभीरता का, समाने की शक्ति क्या हम सबको अपने अंदर धारण नहीं करनी चाहिए? क्यों हम सिर्फ अपने लौकिक जनों को ही अपना परिवार मानते हैं, माता पिता अपने बच्चों की बातों को समा लेते हैं, बाहर जाने नहीं देंगे, फैलने नहीं देंगे? और हमने देखा इन महान विभूतियों को, इन्होंने तो पूरे संसार को अपना परिवार माना, कितना बेहद की इनके अंदर वो आत्मिक दृष्टि थी, वृत्ति थी, वो बेहद की भावनाएं थी सबके प्रति प्रेम की, वो हमने प्रैक्टिकल इनके जीवन में देखा। बातों को इधर उधर फैलाने से, जहां पर जरूरत भी नहीं है उस स्थान पर करने से वायुमंडल कितने बिगड़ते हैं, अवस्थाएं कितनी खराब होती हैं, उसका दोष जो फैलाता है उसके ऊपर कितना आता है। भाई सबको मालूम था कि कौन सी बात करनी है कौन सी बात नहीं करनी है, ऐसा नहीं है कि हमें हर जगह चुप ही होकर के बैठना होता है, बहुत स्थानों पर बोलने की भी आवश्यकता होती है, सरल स्पष्ट शालीन तरीके से अपनी बात को रखना चाहिए जहां पर हमें रखने की आवश्यकता है, लेकिन जहां जिन बातों को समाने की जरूरत है अंदर, जहां गंभीरवत होने की जरूरत है, वहां गंभीरता के गुण का भी हमें प्रयोग करना चाहिए। हम बाबा के यज्ञ के रक्षक हैं, हम सबको प्यारे बाबा का नाम रोशन करना है। तो अगर हमारे यज्ञ की कोई बात इधर उधर जाए, ब्राह्मण परिवार के किसी बाबा के बच्चे की बात इधर उधर जाए और उससे वो नेगेटिव एटमॉस्फेयर बने, उसके प्रति सबकी भावनाएं बदल जाएं, सब उसको और ही नेगेटिव एनर्जी देने लग जाएं, उसका दोष किसके ऊपर आएगा? हमारे ऊपर आएगा। वैसे ये गुण हमने उनके जीवन में बहुत 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 नजदीक से देखा। तो ऐसे तो जो बाबा ने हमको 36 दिव्य गुण बताए हैं ना, वो 36 दिव्य गुणों में अगर आप एक एक गुण का नाम लें तो उनके जीवन के अनेक प्रैक्टिकल वृत्तांत उदाहरण वो हम आपको दे सकते हैं, जो हमने उनके साथ रह करके उनको देखा, उनके जीवन में वो गुण देखे। पर अभी समय पूरा हो रहा है तो मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति।
कर साथे है देवदूत तुम आए थे, स्वर्णिम संसार रचाने को ब्रह्मा का साथ निभाए थे। ईश्वर का वन कर साथे है देवदूत तुम आए थे, स्वर्णिम संसार रचाने को ब्रह्मा का साथ निभाए थे। हे दिव्य दृष्टि वाले संजय, हमें याद तुम्हारी आई। प्यारे जगदीश भाई, हमें याद तुम्हारी आई, हमें याद तुम्हारी आई, बड़ी याद तुम्हारी आई। साहित्य सजन का आदि रतन वरदान प्रभु से पाया था, ईश्वर के ज्ञान को सहज सरल शब्दों में समझाया था। साहित्य सृजन का आदि रतन वरदान प्रभु से पाया था, ईश्वर के ज्ञान को सहज सरल शब्दों में समझाया था। बड़े ज्ञानवान तुम हो गणेश, भगवान ने महिमा गाई, भगवान ने महिमा गाई, हमें याद तुम्हारी आई, बड़ी याद तुम्हारी आई, हमें याद तुम्हारी आई, बड़ी याद तुम्हारी आई। शक्ति के लिए सदा ही मन में था सम्मान भरा, गंभीर बड़े तो हंसमुख भी था, धैर्य हृदय में बहुत धरा। मातृशक्ति के लिए सदा ही मन में था सम्मान भरा, गंभीर बड़े तो हसमुख भी था, धैर्य हृदय में बहुत धरा। हे वक्त के तुम पाबंद बड़े, खूबी अनंत समाई, खूबी अनंत समाई, हमें याद याद तुम्हारी आई, बड़ी याद तुम्हारी आई, बड़ी याद तुम्हारी आई, हम याद तुम्हारी आई। संकल्प श्वास सब सफल किया, आज्ञाकारी आदर्श बने, इतिहास ही सारा बदल दिया। तुम ऋषि दधीचि व्यास बड़े, संकल्प श्वास सब सफल किया, आज्ञाकारी आदर्श बने, इतिहास ही सारा बदल दिया। तुम सारा हुआ ना होगा कोई, नवयुग की राह दिखाई, नवयुग की राह दिखाई। प्यारे जगदीश भाई, बड़ी याद तुम्हारी आई, हम याद तुम्हारी आई, बड़ी याद तुम्हारी आई, बड़ी याद तुम्हारी आई, हम याद तुम्हारी आई, हम याद तुम्हारी आई, बड़ी याद तुम्हारी आई।